शुरुआत मैंने की थी गुरु गोविंद से। गुरु का वास्तव में अर्थ होता है अंधकार को दूर करने वाला। और जब हमारे मन में कोई प्रश्न, कोई दुविधा, कोई संशय की स्थिति आती है तो मन भी जैसे अंधकार से भरने लगता है। तो भ्राता जी, हम सबके ही नहीं बल्कि लाखों आत्माओं के मन में उठने वाले द्वंद, प्रश्न और संशयों को, जो एक अंधकार पैदा करते हैं, उसे भी दूर करते हैं, चाहे कॉल के द्वारा, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, टेलीविज़न हो, या फिर मन की बातें हों, उन सब के माध्यम से। इसीलिए गुरुजी नाम को आप सार्थक करते हैं और इसीलिए बहुत प्यार से भ्राता जी को सभी गुरुजी भी कहते हैं। जब किसी का कॉल आता है, कहते हैं हमें गुरुजी से बात करनी है, मैं कहता हूँ भ्राता जी हैं, तो भ्राता जी नहीं, फिर गुरुजी से और आगे बढ़ जाते हैं, हमें बाबा जी से बात करनी है। तो आप सचमुच बाप समान हैं हम सब के लिए, जो हम सबको प्रेरित करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जहाँ कहीं भी हम आध्यात्मिक रूप से उलझ जाते हैं या मन में प्रश्न उठते हैं, उनका सहज सरल समाधान आपसे हमें सतत प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात जो प्रारंभ में भी मैंने कही कि प्रभु मिलन की जो सुखद अनुभूति है, जो आप हमेशा ही हम सबको कराते हैं, उसके लिए हम सब दिल से बहुत बहुत आपके आभारी है। एक हाथ की ताली तो उसके लिए ज़रूर, भ्राता जी के लिए, जो सहज सरल और सुखद अनुभूति के विधियां हम सबके सम्मुख रखते हैं। भ्राता जी, प्रश्नों की ओर लिए चलता हूँ आपको, ढेर सारे हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, ज्ञान बुद्धि में है पर उसे दिल तक कैसे पहुँचाना है?
दिल का संबंध भावनाओं से होता है और भावना मनुष्य को अनुभवों के बाद पैदा होती है। कुछ लोगों में भक्ति भाव पहले से ज़्यादा रहा तो भगवान को जिस रूप में भी माना उसमें भावना बहुत आ गई, भावना से उन्हें सुंदर अनुभव होने लगे। यहाँ ज्ञान हमारी बुद्धि में रहता है पर ज्ञान के साथ अगर प्रेम भी बहुत होगा तो दोनों मिलके भावनाओं को जन्म देंगे। इसे ही दिल कहा जाता है, जिसमें प्यार हो और भावनाएं हो। तो सभी, जैसे हमने छोटी विधि की, प्यार बढ़ाएंगे, शरीरीपन के अभ्यास से बाबा से प्यार ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। ज्ञान को अपने अनुभवों में लाएंगे। कोई एक माता पिछले ग्रुप में बहुत अच्छी बात कह रही थी, उसने यही शब्द शुरू किए कि बिना अनुभव के भावना नहीं बनती थी। मुझे एक वंडरफुल अनुभव बीमारी में बाबा का हुआ, उस दिन से बहुत भावना हो गई बाबा से। तो दिल का प्यार और अनुभव, ये बहुत ज़रूरी है ज्ञान को दिल तक पहुंचाने के लिए। और जो मैंने आपको एक बात कही, स्वच्छता, उस पर बहुत ध्यान देंगे आप। देखो, स्वच्छ वैसे भी घरों को भी आप स्वच्छ कर दो कितना अच्छा लगता है, अच्छे कपड़े पहन लें कितना अच्छा लगता है। बुद्धि को स्वच्छ करेंगे तो ज्ञान जो बुद्धि में है वो अनुभव में आ जाएगा।
आज की मुरली में बाबा ने कहा, पिछाड़ी में आने वाले भी थोड़ी मेहनत कर पुरानों से आगे जा सकते हैं। तो हम अभी पिछाड़ी में आए हैं, तो ये थोड़ी मेहनत क्या है जिससे हम पुरानों से भी आगे निकल जाएं?
उपेश भाई जब समर्पित हुआ ये छोटा था और ठीक यही प्रश्न मेरे से करता था, हम बहुत लेट आए हैं, अब थोड़ी सी मेहनत क्या करें जो आगे निकल जाएं। निकल गए ना रूपेश भाई, अब आप ही बता दो क्या थोड़ी मेहनत की आपने।
मार्गदर्शन आप
ऐसे नहीं किया। कई सारे भाई भाइयों को मेरे से ज्यादा रहता कनेक्शन था, तो आए और ये प्रश्न करते ही थे, थोड़ी मेहनत है एसरीरी होने की, बिल्कुल छोटी सी मेहनत है, इसको सीरियसली नहीं लेना है, इतना ही आप अभ्यास शुरू करें, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, ऐसे शरीर मैंने कितने लिए और छोड़े हैं, एक चिंतन में ले आए इसको, इससे दिव्यता आती जाएगी जीवन में। दूसरी छोटी सी मेहनत है स्वमान की, उसमें भी कोई एकाग्र करें, टाइम निकालें, उसकी जरूरत नहीं होती है। सहज ये दो मेहनत, बाकी हमें कुछ धारणाओं पे जरूर ध्यान देना है। जैसे चाहे आप कल ही ज्ञान में आए हैं, अपने अंदर छुपे हुए मैंपन को पहचानने लगे और उसे हटाने लगे, मैं और मेरा, ये आगे बढ़ने में सबसे सूक्ष्म बाधाएं हैं, दोनों पे ध्यान दे, पहचान लें। मैं एक कहानी सुनाया करता हूँ, वो बहुत काम आएगी आपको। पार्वती को इच्छा हुई कि हम झोंपड़ियों में ही रहते हैं, तुम सबको महल दे देते हो, हमारे लिए भी एक सोने का महल बनाओ। उसने बहुत समझाया कि हम तो सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, सोने के महलों में हमें नहीं रहना, अपनी झोंपड़ी अच्छी है। पार्वती नहीं मानी, चलो कुबेर को बुलाया, भाई जितना भी चाहिए दे देना, और विश्वकर्मा आप जानते हैं, नाम सुना है, उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, जल्दी सोने का महल बना दो। महल बन के तैयार हो गया, अब गृह प्रवेश की बारी आई, तो रावण ही उस समय सबसे बड़ा पंडित और शिव का भगत था, कहा रावण को भी बुला लो गृह प्रवेश के लिए। रावण आ गए, गृह प्रवेश की सारी प्रक्रिया पूर्ण कर ली। महादेव जी ने पूछा, भाई अब दक्षिणा का समय आ गया है, बोलो तुम्हें क्या दक्षिणा चाहिए। रावण के मन में था कि शिव इस महल में रहेंगे, मैं भी यहीं रहूं, तो प्यार था ना बहुत उससे, दोनों साथ रहेंगे और क्या चाहिए मुझे। उसने कहा, महादेव जी ये लंका ही मुझे दे दो, ये सोने का महल ही मुझे दे दो। महादेव जी मुस्कराने लगे पार्वती की ओर, बोली कहा नहीं था हमारे भाग्य में झोंपड़ी में रहना ही है। माताओं की ज्यादा इच्छा रहती है ना, तो एक सुंदर बात महादेव जी ने रावण को कही। अभी महादेव जी चलने लगे, रावण ने कहा आप क्यों जा रहे हो, कहा जहाँ मेरा मेरा है वहाँ मेरा वास नहीं है, इसलिए हम चले, शिव बाबा की भी उपस्थिति वहीं रहेगी जहाँ मैं और मेरा नहीं होगा, बस इतना काम करेंगे संतुष्ट आत्मा बन जाएंगे, दो वो प्रैक्टिस करेंगे तो योग बहुत अच्छा लगेगा, तेजी से आगे बढ़ेंगे। बाकी ये ध्यान देना है, अपने को फास्ट गति से चेंज करते चलो, ये नहीं किसी संस्कार के अधीन हो गए, उनकी सबकी विधि है हमारे पास, पांच स्वरूपों के अभ्यास से संस्कार बदल जाएंगे। और एक ही सुंदर बात याद रख लो, विचार बदल देंगे हमारा संसार बदल जाएगा, तो मुरलियों से रोज अपने विचारों को बदलते चलेंगे और सहज हम आगे बढ़ेंगे।
सोते हैं तो नींद नहीं आती और योग में बैठते हैं तो नींद आती है,
कितनी अच्छी बात है। सोते हैं तो नींद नहीं आती, प्रभु मिलन करते हैं तो सोते हैं। देखो इस पे मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, किसी का मन और भारी हो जाएगा तो नींद और ज़्यादा आने लगेगी। आप पुण्य कर्म करें ज़्यादा, ये पाप का दबाव है पूर्व जन्मों के, पाप कर्मों का दबाव है दिमाग पे जो प्रभु मिलन का सुख नहीं लेने देता। मुरली चलेगी तो फट से सो जाएंगे, और रात को नींद करने के लिए सोने से पहले 108 बार लिखना शुरू करो, मैं एक महान आत्मा हूँ। एक और चीज करेंगे, क्षमा याचना, जिनको भी हमने कष्ट दिया है, जिनके संबंध से पाप बहुत कर लिए, मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ, आप प्रसन्न हो जाएं। तो जो बैड एनर्जी दूसरों से आ रही है वो कट जाएगी, फ्रेश हो जाएंगे। एक और बात, थोड़ी वो मेहनत की है, बहुत आत्माएं किसी ना किसी प्रेशर को लिए हुए जीवन जी रहे, दबाव दिमाग पे कोई दबाव लिया हुआ है सदा। इस प्रेशर को ज्ञान के द्वारा हटाते चलो, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज। अब बाबा ने ज्ञान दे दिया है, देखो मैं वो बात जो बहुत सुनाता हूँ, मेरी प्रिय बात रही, जब से बाबा ने बोला था मुझे उसी क्षण से पक्की हो गई थी, बच्चे अपने मन के बोझ मुझे दे दो। फिर बहुत अच्छी बात कही, जो बाप सारे संसार का बोझ उठाने वाला है क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? समझ में आया वो क्या चाहता है, हम क्यों नहीं इतना छोटा सा काम करते। बहुत मजा आया जीवन में, जीवन में दिमाग पर कोई दबाव हो आपके, बहुत कुछ होता है हर एक के जीवन में, ऐसा नहीं कि दबाव ऐसे ही है, बहुत कुछ हो रहा है आजकल संसार में, दबाव आता है, लेकिन ज्ञान की ऐसी बातों के द्वारा इस प्रेशर को हटाते चलो, अपने को हल्का करते चलो, फ्रेश करते चलो। भगवान हमारा साथी है, उसे गुड फ्रेंड बना लो अपना, उसको देते चलो बोझ, तो फिर ये नींद की समस्या खत्म हो जाएगी। और एक काम, सवेरे खाली पेट अनुलोम विलोम प्राणायाम कर लो 10 मिनट, जानते हैं ना ये, तो ब्रेन को ऑक्सीजन जाने लगेगी। ये बात वो बताते नहीं या उन्हें पता नहीं, ब्रेन को इस प्राणायाम से ऑक्सीजन जाती है, खुल जाएगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी और फिर योग में भी आप फ्रेश रहेंगे।
यज्ञ में अपना धन सफल करना चाहता हूँ, कहाँ करूँ? बाहर सेंटर्स पर कितना करें और यज्ञ में कितना करें?
जहाँ आपकी जितनी भावना हो वहाँ उतना ही कर दो, परेशानी कोई बात नहीं। बात इस चीज की है कि धन सफल करने के पीछे आपके चित्त में क्या भावना है। मैं थोड़ा ओपन कर देता हूँ, कई लोग अपना धन सफल करते हैं सेंटर में, फिर बहनों से बहुत कुछ चाहते हैं, बहन हमारा सम्मान करे, हमें सबसे परिचित कराए, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कईयों में एक और थोड़ी खराब बात आ जाती है, सेंटर हमने बनाया है, अब मैं जो कहूँ वही बहन जी करे। मैं बहनों का करता हूँ, उसके पैसे सारे लौटा दो, किसी की अधीनता में इस देवियों को रहना नहीं चाहिए। इस देवी समझ रहे हैं ना, कोई और रह ले तो रह ले, आपके चरणों में तो संसार का सारा धन आने वाला है, ये गलत है। इसलिए एक हाथ दे दूसरे को पता ही ना चले, जहाँ जरूरत है। यज्ञ में भी अब बहुत जरूरत है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 साल बहुत कुछ खाली हो गया है। अभी आप सोचो इतने बड़े मकान, उनको मेंटेन करना बहुत पैसा लगता है, आना कम हो गया था, इसलिए अगर कोई अपना सफल करना चाहता है सेंटर में भी करे, लेकिन महायज्ञ में भी करे, इसकी इस समय विशेष ज़रूरत है।
कोरोना काल में बंद था इसलिए कोई नहीं आता था, लेकिन अभी आने में आनाकानी करने लगे हैं, और सेंटर की मुरली अभी तक भी ऑनलाइन चल रही है, तो वो सबको मिलती भी नहीं है। तो सेंटर पर स्टूडेंट्स फिर से आना शुरू करें, इसके लिए क्या करें?
आनाकानी तो होने लगी, क्योंकि घर में सोने की आदत पड़ गई, मोबाइल पे मुरली सुनने की आदत पड़ गई, अब घर में ही माल मिल रहा है, छोड़ो, थोड़ा सोएंगे थोड़ा सुनेंगे चल जाएगा काम। बहनों को इसमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। कई बहनों ने तो कोरोना काल में भी पालना चालू रखी थी फ़ोन के द्वारा भी, ताकि कनेक्शन बना रहे। जो ऐसा नहीं कर पाए, बहनें भी कई जगह डर गई या उनको भी कोरोना हो गया। अब आप सब एक काम करेंगे, सभी टीचर बहनों के लिए है संसार की, सवेरे 15 मिनट योग अपने सभी भाई बहनों के लिए करेंगे और उनका आह्वान करेंगे कि आ जाओ फिर से सेवा केंद्र पर, और एक विजन देखेंगे कि हमारा क्लास, मुरली क्लास, हमारा हॉल फुल है। विजन देखेंगे, आह्वान करेंगे, योगदान करेंगे और चित्र बनाएंगे मन में, भर गया है हॉल 2 मास में ही, तो धीरे धीरे आने लगेंगे। और चौथी बात, आत्माओं से माइंड टू माइंड बात करें, मन से बात करें, उन्हें सबको आत्मा देखो, जैसे आपके सामने हैं सब भाई बहने आत्माएं हैं, और उन्हें संकल्प दो, समय तेजी से बदल रहा है, अभी बाबा से सब कुछ लेने का समय है, ये समय बिता दिया तो आने वाला समय बहुत भारी होगा, इसलिए चुस्त हो जाओ, बाबा से सब कुछ लेने के लिए आओ, जैसे आप आवाज दे रही हैं मन से आओ, तो ये वाइब्रेशंस उनको पहुंचेंगे और जल्दी ही जो आनाकानी कर रहे हैं वो आने लगेंगे।
पास्ट की परछाई आगे बढ़ने में बार बार विघ्न रूप बनती है, डिस्टर्ब करती है, तो ऐसे समय खुद को कैसे स्ट्रॉन्ग करें?
पास्ट का दबाव, पास्ट की स्मृतियां आगे नहीं बढ़ने देती। जैसे रेस चल रही हो, रेस चलती है ना 100 मीटर, 400 मीटर, एक किलोमीटर की भी, कई लोग दौड़ते हैं एक साथ, लड़कियां भी दौड़ती हैं, लड़के दौड़ते हैं, मान लो कोई धावक, कोई एथलेटिक पीछे मुड़ के बार बार देखता है, तो वो आगे जाएगा या पीछे रह जाएगा? उसको तो कोई मेडल मिलने वाला नहीं है। जो केवल मंजिल को देखते हैं वही मंजिल पर पहुंचते हैं, इसलिए पास्ट को भूलने के लिए एक तो मैंने कहा आपको क्षमादान दे दो, क्षमा याचना भी कर लो, क्षमादान भी दे दो। क्षमादान देने के लिए थोड़ी ताकत चाहिए आत्मा में। कईयों को मैं कहता हूँ ना, वो कहती हैं, बहनें खास कहती हैं, हम इसे क्षमा नहीं करेंगे। मैंने कहता हूँ फिर परेशान रहोगी, कहा क्षमा नहीं करना है, इसको तो हम जेल में देखना चाहते हैं, इसको तो हम फांसी पे लटका हुआ देखना चाहते हैं, ऐसी सुभावनाएं रहती हैं नहीं। शक्तिशाली व्यक्ति दूसरे को क्षमा कर देता है, तो वो जो भारीपन है ना मन में पास्ट का, उसको तो हटाना है ना, हटाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े कर लेना चाहिए, क्षमा कर दो, सुखी रहो, अब हम बड़े हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, अब बाबा ने हमें बड़े बनाया है, हम तुम्हें क्षमादान देते हैं, सुखी रहो। और पास्ट बिल्कुल भूल जाए, 5 स्वरूपों का अभ्यास 3 मास कर लो, 5 बार सवेरे, 5 बार सोने से पहले, तो ये छपता जाएगा, वो डिलीट होता जाएगा, उसका इफेक्ट कम होता जाएगा।
आज भी बाबा ने कहा पवित्र बनो, और बाबा इतना बोलते हैं तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते, लेकिन यही एक मुख्य धारणा है जिसमें परेशानी होती है, तो इस धारणा को कैसे सहज जीवन में लाएं? कई बार ऐसा देखा जाता है कि उम्र बहुत ज़्यादा भी है फिर भी विकार परेशान करते
हैं। देखिए हम सभी आत्माएं, ये किसी एक दो की बात नहीं है, सभी आत्माएं द्वापर युग से विकारों में रत रही, उसका इफेक्ट सभी के ऊपर है। कोई साधनाएं करके उसको ढीला कर देते हैं, जो साधनाएं नहीं करते तो इन वासनाओं का फोर्स बढ़ता जाता है, क्योंकि कलयुग में बाबा के शब्दों में काम की आग लगी हुई है, उसका सेक आने लगेगा। इसलिए जो ये हमें छोटी छोटी साधनाएं हैं, ऐसरीरीपन, योग युक्त अवस्था, सवेरे उठना, मुरली सुनना, ज्ञान का चिंतन करना, इनसे प्योरिटी की पावर बढ़ती चलेगी। ध्यान ये रखना है कि अगर थोड़ा बहुत हम कहीं कमज़ोर पड़ते हों तो जल्दी ही अपने को जगा देना है। अपनी कुछ चीज़ें लिख कर रखो जिनको पढ़ते रहो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पानी चार्ज करके पीना है इस संकल्प से, और देव कुल की आत्मा हूँ, वही पांच स्वरूप अभ्यास करने हैं, तो प्योरिटी स्ट्रांग बनेगी। प्योरिटी निश्चित रूप से एक बड़ा सब्जेक्ट है, कईयों के लिए भारी भी है। माया से इसी से हार खाती आई हैं आत्माएं बहुत बहुत। हमने तो अपने मधुबन के जीवन में देखा कितने गए कितने आए। कुमारों को तो मैं कहता था एक साथ बहुत आते हैं और फिर एक साथ ही बहुत चले जाते हैं, एक साथ संख्या बढ़ती है फिर घट जाती है। कलयुग का प्रभाव भी है, सोशल मीडिया का प्रभाव भी है, गंदी चीज़ें जेब में ही पड़ी हैं सबके। हमारी एक बहन कहा करती थी इस मोबाइल को सबने अपनी अपनी जेब में गुंडा रखा हुआ है। रुपेश भाई को पता है गंदगी तो है ही, इनसे बचेंगे, साधनाओं पे ध्यान देंगे। ये बहुत अच्छी तरह जान लें, अगर प्योरिटी के सब्जेक्ट को अच्छा बनाना है तो 4 घंटे रोज हमारी योग साधना होनी ही चाहिए। वो बैठकर ही जरूरी नहीं है, वो कर्म में भी स्मृति स्वरूप होंगे तो स्मृति से हमारी स्थिति, हमारी प्योरिटी बढ़ती जाएगी।
क्या बाप दादा अब साकार में नहीं आएंगे? हम आए और अव्यक्त पाठ पूरा हो गया।
हम आए और अव्यक्त पाठ पूरा हो गया। क्यों हो गया? कई लोग सोचते हैं हम इतने खराब हैं क्या कि हमारे आते ही भगवान ने आना ही छोड़ दिया। नहीं, बाबा समय को देखते हुए अब हम सभी आत्माओं को और स्ट्रांग करना चाहता है, सूक्ष्म विधियों की ओर ले चलना चाहता है। जो बाबा ने कहा ना, तुम सबको तो रिफाइन ज्ञान मिल रहा है, अभी अव्यक्त में ज्ञान सचमुच बहुत सूक्ष्म हो गया है। तो बाबा का आने का पाठ तो पूरा हो गया, सब जानते ही हैं, क्योंकि बाबा को हम सबको अब साक्षात्कार मूर्त बनाना है। इसलिए इस बात को इस तरह ले लें कि बाबा अब नहीं आ रहे हैं तो हमें अपने को इतना योग्य बनाना है कि जब बाबा का आह्वान करें उसकी उपस्थिति को पाएं। पॉजिटिव ले लो इसको। तो बाबा का आना और ना आना ये प्रश्न ही समाप्त हो जाएगा। आपको फील होगा बुलाया और वो आ गए, बहुत अच्छी अनुभूति होगी। तो इसको निगेटिवली सोचकर अपने को निराश नहीं करना है, जब आ गए तभी अच्छा है। हिंदी में कहावत है, जब जागे तब हुआ सवेरा।
कई लोग ये कह रहे हैं कि बाबा वहाँ नहीं, हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो आओ अब हम बाबा से आपको मिलाते हैं। तो मन में एक आता है कि चलो एक बार देख के आते हैं, और वो तर्क ये देते हैं कि बाबा ने कहा है कि अंत तक समय तक साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, साथ ही आएंगे, तो जब बाबा ने कहा है तो वो गलत कैसे कहे?
देखिए, बाबा ने कह दिया था मैं मधुबन के अलावा कहीं नहीं आता, ये सब माया के भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। मैंने भी देखा, मैंने उनसे पूछा कि कोई बाबा के द्वारा चलाई गई गुहे मुरली तो लाओ, कोई नहीं है, बस आ गए, बाबा से मिलन हो गया, बच्चे खुश राजी हो, ये कुछ नहीं होता। और मैं खोल के ही बता देता हूँ, जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो भ्रम में हैं, क्योंकि बहुत जगह इस तरह बाबा आते रहे और चले गए, सेंटर के सेंटर नष्ट करके चले गए। महाराष्ट्र में भी एक हुआ था, पुणे वालों को पता हो, बॉम्बे में ही हुआ, बॉम्बे के आसपास, नाम भी मुझे पता, उसका शोर मच गया, बाबा आ रहा है, भागने लगे लोग। एक मास तक बाबा आया, फिर सबको लेकर भाग गया। इसलिए इन भ्रमों में नहीं जाना है, अपनी स्थिति को योगयुक्त बनाना है।
बाबा ने आज कहा दुखों के पहाड़ गिरेंगे, तो ये दुखों के पहाड़ हम पर गिरेंगे या दुनिया वालों पर गिरेंगे?
हम होंगे हम होंगे सभी को पहाड़ से नीचे निकालने, बाहर निकालने वाले। आप पहाड़ के नीचे दब नहीं जाएंगे, आप रेस्क्यू फोर्स रहेंगे बचाने वालों की फोर्स होती है ना, सबको दुखों से मुक्त करने वाले। दुखी होना न होना ये मनुष्य के अपने हाथ में है, है या नहीं है हाथ में। ज़्यादा सोचने वाले दुखी रहते हैं, सब कुछ कल्याण की सोचने वाले सुखी रहते हैं। तो इसलिए अपना पार्ट निश्चित कर लो, मुझे वाइब्रेशंस देकर सभी को दुखों से मुक्त करना है। संसार में दुखों के पहाड़ गिरेंगे, अभी भी कोरोना में भी गिरे थोड़े थोड़े, अभी थोड़े पत्थर ही गिरे हैं, पहाड़ नहीं गिरे, लेकिन होगा हाल बहुत खतरनाक। हमारी स्थिति अच्छी होगी तो हम बिल्कुल मुक्त रहेंगे, बाबा के छत्र छाया में सुरक्षित।
आज भी बाबा ने कहा मौत सामने खड़ा है, टाइम बहुत कम है, और बाबा प्रारंभ से कहते आ रहे हैं कि अगली दिवाली नहीं आएगी। तो अभी से लेकर सतयुग के प्रथम दिन तक कितनी अवधि है और स्वरूप क्या होगा भविष्य?
कितनी दिवाली और आएंगी ये जानना चाहते हैं। बाबा ने पहले दिन से कहा था बच्चों अगली दिवाली नहीं आएगी, मौत सामने खड़ा, जल्दी करो। आप सोचो अगर बाबा ऐसा न कहते तो जो 400 भाई बहने आए थे वो आते, वो कह देता 100 साल पड़े हैं, तो कहा अगला जन्म लेके ही आएंगे, छोड़ो इस जन्म में एंजॉय करने दो। मनुष्य की मेंटलिटी है ना। और दूसरी बात ये कि ये संपूर्ण बनने की यात्रा काफ़ी लंबी है, इसमें समय जाता है। इसलिए बाबा ने सबको लंबी यात्रा कराई, भिन्न भिन्न अनुभव कराए, उससे भी हम सब गुजर रहे हैं। अब बिल्कुल आपको स्पष्ट हो संगम युग कितने साल का है, 100 साल का, और वो पूरा हो जाएगा 2036 में। बस विनाश और स्थापना ये तब तक ही चलेगी, उसके बाद देवताओं का जन्म होगा और देवयुग की ओर हम आगे बढ़ेंगे।
मुझे रोज़ की दिनचर्या में कभी कभी तो स्थिति बहुत अच्छी रहती है और कुछ परिस्थिति आई कि स्थिति एकदम नीचे आ जाती है, फिर कितना भी करो, बाबा को लेटर भी लिखो, लेकिन वही विचार आते रहते हैं, वो स्थिति वापस नहीं बन पाती।
इस समय एक बड़ी चीज़ हो रही है इस सृष्टि में कि ज़्यादा सोचने की आदत का प्रकोप होता जा रहा है, सभी के ब्रेन की शक्ति बहुत कमजोर पड़ती जाती है। इसलिए एक बार स्थिति बिगड़ गई फिर उठना बहुत मेहनत का काम हो जाता है। इसलिए कम से कम ज्ञान की 16 पावरफुल पॉइंट्स अलग से लिख के रखना, जो आपकी स्थिति को अचल अडोल बनाए, जो आपकी स्थिति को बिगड़ने दें न दें। तो ज्ञान के बल से हम ऐसा जीवन बनाएंगे कि परिस्थितियाँ कम से कम आए, फिर भी आती हैं, क्योंकि पूर्व जन्मों के हिसाब किताब भी अपना पूरा इफेक्ट लेकर चल रहे हैं। ये वो समय है जब पूर्व जन्मों के सभी के कर्म एक साथ वार करते जा रहे हैं और ये वार बढ़ते जाएंगे। इसलिए कुछ सिद्धांत अपने जीवन के बना लो, बाबा मेरे साथ रहता है इस बात को पक्का कर लो, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा ये संकल्प पावरफुल कर लो, तो स्थिति थोड़ी बिगड़ेगी जल्दी समझ जाएंगे।
ब्रदर जी, कुछ कृषक भी हैं हमारे इस ग्रुप में, इन्होंने पूछा है अब सब्जियों में बहुत पेस्टिसाइड हमें यूज़ करना पड़ता है तो उसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, तो क्या उसका बोझ हम पर आएगा? और दूसरा ये कि प्याज आदि यदि हम नहीं लगाते हैं नुकसान होता है, और नहीं हम लगाते हैं बोते हैं, मतलब लगाते हैं तो फिर एक पाप जैसा भी फील होता है।
अब देखिए कलयुग के अंत में पाप ही पाप है, पुण्य कहाँ से आएगा? आप खेती में ये खाद नहीं डालोगे, पेप्टिसाइड इंग्लिश में कहते हैं पेप्टिसाइड्स, तो जमीन की जो उर्वरक शक्ति है वो तो नष्ट होती जा रही है और लगभग नष्ट होने को आई है। इसलिए ये सब डाल के अन्न सब्जियां दी जा रही हैं संसार को। अगर ये भी न डालें, आप जानते हैं जो किसान हैं, बैंगन आपने बोए कीड़े लग जाएंगे, गोभी बोई सब खत्म हो जाएगी, गेहूं बिल्कुल छोटा हो जाएगा, गन्ना सूख जाएगा। इसलिए जैसा समय वैसा करना ही पड़ेगा। रही बात प्याज आदि खेती करने की, मेरे पास आए थे भाई, क्योंकि वहाँ खेती ही प्याज की होती है तो उसको करने में हर्जा नहीं है। प्याज खाने वाले आपका नहीं खाएंगे, वो तो किसी और का खाएंगे, इसलिए उसमें आपका दोष कोई नहीं है।
प्रताप जी, ज्ञान की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इतनी सारी बातों में कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है कि क्या करें और क्या ना करें। क्या आप हमें कुछ की पॉइंट्स देंगे जिस पर हम फोकस करें, जिसमें सारी ही ज्ञान की बातें आ जाएं और हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो
मैंने
जाए?
बता दी हैं वो सब बातें, अशरीरी बनने का अभ्यास, स्वमान का अभ्यास, मैं और मेरे के त्याग का अभ्यास, अपने विचारों को महान रखना, बस इतना ही करना है। उसी के लिए बाबा मूल्यों में अलग अलग बातें करते हैं, वो अलग हैं नहीं, वो सब आत्मोत्थान के लिए हैं। किसी को कोई बात बहुत पावरफुल्ली काम करती है, किसी को कोई और बात। सबको सारी बातें काम की हों ये नहीं होता है कभी। इसलिए आपको जो बात लगे ये तो ज़्यादा हो गई, उसे थोड़ा साइड रख दो और इन सब तीन चार बातों पे फोकस करो तो सभी उसमें आ जाएगा। सार तो यही है, बाबा की मुरली में आ चुका है, सारी पॉइंट्स का सार है पॉइंट हो जाना, आत्मा हो जाना।
सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है व्रता जी, कि अपनी आदतों को संस्कारों को कैसे बदलें, तपस्या के बाद भी क्रोध आ जाता है बार बार।
किसी ने मुझे एक हंसी में बहुत ज़्यादा अच्छी बात कह दी, भाई कई लोग बहुत योग तपस्या करते हैं पर जीवन नहीं बदलता। मुझे तो लगता है राक्षसों ने भी तो बहुत तपस्या की थी, रावण ने बहुत की थी, बन गए रावण जी। इसलिए चारों सब्जेक्ट पे ध्यान देकर हमें चलना है। योग से यदि संस्कार नहीं बदल रहे हैं तो बिल्कुल स्पष्ट जान लें, योग करना आता नहीं है। जबरदस्ती ध्यान लगा रहे हैं बाबा में, ध्यान नहीं। पांच स्वरूपों के अभ्यास से, ज्ञान के चिंतन से हमारे संस्कार बदलते हैं। तीसरी योग की शक्ति भी चाहिए, लेकिन पांच स्वरूपों का अभ्यास जो योग का एक हिस्सा है और ज्ञान के सुंदर विचार, इनसे संस्कार बदलेंगे।
फाइनली लास्ट क्वेश्चन है प्रताप जी, कुछ प्रश्न तो रह गए हैं लेकिन सब शामिल हो गए। अव्यक्त मिलन की अनुभूति कैसे हो, हम क्या करें? केवल बाबा के दिन ये मिलन होता है या रोज ही ये मिलन हो सकता है?
मैं इसका ही तो उत्तर दिया शुरू में, इस पे तो क्लास थी सारी, वो तो हो गई है। रोज करें, जब चाहें करें, और हमने तीन चार बातें कराई हैं और भी इस पे क्लास होते ही रहे हैं, वो आप सुन लेना। मिलन करना।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, पुनः हम भ्राता जी को एक हाथ की ताली से